आप सुनना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 हिंदी का पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में मैं अनुराग अन्वेषी एक बार फिर हाजिर हूं। दोस्तों, स्वीकार करें मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज रामनवमी है, हमारी शुभकामना स्वीकारें। इसके साथ ही फिर दोहराना चाहूंगा कि कोरोना महामारी के इस विकट दौर में किसी भी तरह का ऐसा आयोजन न करें जिससे सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ें। बेवजह घर से न निकलें, बेहद ज़रूरी होने पर अगर निकलना भी पड़े तो मास्क ज़रूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो यही अपील की है कल रात देश की जनता से। तो आज की पहली खबर प्रधानमंत्री के संबोधन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना की दूसरी प्रचंड लहर के बीच मंगलवार की रात देश को संबोधित किया। पीएम मोदी ने बताया है कि बीते साल आई कोरोना की लहर और वर्तमान दूसरी लहर के बीच क्या बदला है। उन्होंने कहा कि बीते साल हमारे पास कई महत्वपूर्ण चीज़ों की कोई व्यवस्था नहीं थी। पीपीई किट जैसी मूलभूत चीज़ें देश के पास बिल्कुल नहीं थी, लेकिन अब स्थितियां काफ़ी बदली हैं। पीएम मोदी ने एक साल के भीतर देश में मौजूद दो वैक्सीन का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन कार्यक्रम देश में चलाया जा रहा है। साथ ही 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर सभी लोगों के वैक्सीनेशन की बात भी उन्होंने कही। उन्होंने कहा,
वैक्सीनेशन को 18 वर्ष की आयु के ऊपर के लोगों के लिए ओपन करने से शहरों में जो हमारे वर्कफोर्स है उसे तेजी से वैक्सीन उपलब्ध होगी। राज्यों और केंद्र सरकार के प्रयासों से श्रमिकों को भी तेजी से वैक्सीन मिले लगेगी। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखे, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे। राज्यों द्वारा दिया गया ये भरोसा उनकी बहुत मदद करेगा कि वो जिस शहर में है वहीं पर अगले कुछ दिनों में वैक्सीन भी लगेगी और उनका काम भी बंद नहीं होगा।
लॉकडाउन के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
साथियों, आज की स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। मैं राज्यों से भी अनुरोध करूंगा कि वो लॉकडाउन को अंतिम विकल्प के रूप में ही इस्तेमाल करें। लॉकडाउन से बचने की भरपूर कोशिश करनी है और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर ही ध्यान केंद्रित करना है। हम अपनी अर्थव्यवस्था की सेहत भी सुधारेंगे और देशवासियों की सेहत का भी ध्यान रखेंगे।
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए देश में ऑक्सीजन सिलेंडर, रेमडेसिविर और अस्पतालों में बेड जैसी ज़्यादातर चीज़ों की कमी महसूस की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार ने लोगों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने घोषणा की है कि कोविड 19 के इलाज में कारगर माने जा रहे रेमडेसिविर इंजेक्शन को बनाने में इस्तेमाल होने वाले कच्चे माल के आयात पर कोई शुल्क नहीं वसूला जाएगा। यही नहीं, रेमडेसिविर इंजेक्शन के आयात को भी ड्यूटी फ्री कर दिया गया है। केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद आने वाले दिनों में देश में दवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 28,395 नए मामले सामने आए हैं और 277 लोगों की मौत हुई है। अगर पॉजिटिविटी रेट की बात करें तो वह बढ़कर 32.82% तक पहुंच गई है। दिल्ली में इस समय कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 85,575 है। दिल्ली में बिगड़ते हालात को देखते हुए 6 दिन के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह कर्फ्यू सोमवार रात 10 बजे से 26 फरवरी सोमवार की सुबह 5 बजे तक के लिए लगाया गया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव पर्यवेक्षकों का कहना है कि अगर उन्हें अतिरिक्त सुरक्षा बल दिए जाएँ तो आखिरी दो चरणों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। बंगाल में 22 अप्रैल को छठे फेज का मतदान है, वहीं 26 अप्रैल को सातवें और 29 अप्रैल को 8वें चरण के लिए वोटिंग होनी है। हालांकि देश में कोरोना वायरस महामारी के बढ़ते मामलों के चलते पश्चिम बंगाल में बाकी चरणों के मतदान एक साथ कराने की मांग कई बार की जा चुकी है। मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मंगलवार को एक बार फिर चुनाव आयोग से राज्य में बाकी बचे चरणों का चुनाव एक साथ कराने की अपील की है। इस बीच बंगाल चुनाव निर्वाचन आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक अखबार को बताया कि बंगाल चुनाव आयोग के दफ्तर में कम से कम 25 लोग कोरोना संक्रमित हैं। वहीं अब तक इस महामारी से 2 उम्मीदवारों की मौत हो चुकी है। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे हैं। इन्हें आप विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। इंदौर में राधास्वामी सत्संग व्यास की 45 एकड़ जमीन पर 594 बेड का एक अस्थायी अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। इसका ट्रायल बुधवार यानी आज से शुरू होगा। कोविड केयर सेंटर के व्यवस्था प्रभारी डॉक्टर निशांत खरे ने बताया कि इस अस्थायी हॉस्पिटल को देवी अहिल्याबाई का नाम दिया गया है। यहाँ मरीजों की सुविधा को देखते हुए एक लैब भी तैयार किया जा रहा है। इसमें RT-PCR को छोड़कर सभी जांचें की जा सकेंगी। यहाँ मरीजों को भेजने से पहले रैपिड रिस्पांस टीम उनकी स्क्रीनिंग करेगी। इस अस्थायी अस्पताल में 2.5 करोड़ रुपए की लागत से ऑक्सीजन के 2 प्लांट भी लगे हैं। बताया जा रहा है कि इन प्लांटों से लगभग 900 लीटर प्रति घंटा ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। राजस्थान में बीकानेर जिले की नोखा सब जेल से मंगलवार आधी रात को 5 कैदी फरार हो गए। फरार कैदियों की तलाश में बीकानेर जिले समेत आसपास के इलाकों में कड़ी नाकेबंदी करवाई गई है, लेकिन अभी तक कैदियों का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। यह मामला मंगलवार आधी रात करीब 2:30 बजे का है। जेल में बंद कैदी बैरक की खिड़की तोड़कर बाहर निकले, बाद में कंबल से बनाई गई रस्सी के सहारे जेल की 2 दीवारें पार कर फरार हो गए। इनमें एक कैदी हरियाणा का है, जबकि 4 कैदी हनुमानगढ़ के। जेल ब्रेक होने की सूचना के बाद पुलिस ने मौका मुआयना कर कैदियों की तलाश में कड़ी नाकेबंदी करवाई है। आसपास के सभी थानों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस उपाधीक्षक नेमसी चौहान और निरीक्षक अरविंद सिंह के नेतृत्व में कैदियों की तलाश की जा रही है। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को सबूतों के अभाव में क्लीन चिट दे दी गई है। सूत्रों की माने तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दी। 8 महीने की जांच के बाद कमेटी को कोई गवाह नहीं मिला जिससे यह साबित हो सके कि विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस की मंशा के अनुरूप और फर्जी था। जांच के दौरान जस्टिस बीएस चौहान ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन कमेटी को एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले जिससे यह साबित हो सके कि एनकाउंटर फर्जी था। साक्ष्यों के अभाव में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पुलिस को क्लीन चिट दे दी गई है। अमेरिका में बीते साल हुए प्रदर्शन के दौरान अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के मामले में पूर्व मिनियापोलिस अधिकारी डेरेक चाविन को दोषी ठहराया गया है। अब डेरेक चाविन दशकों के लिए जेल भेजे जा सकते हैं। श्वेत पुलिस अधिकारी चाविन पर 46 वर्षीय फ्लॉयड की हत्या का आरोप है। आरोप है कि चाविन ने 9:29 तक फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबाई जिससे उसकी मौत हो गई। कुल 12 लोगों की जूरी में 6 श्वेत और 6 अश्वेत जजों ने करीब 10 घंटों के विचार विमर्श के बाद अपना फैसला सुनाया। चाविन सभी मामलों में दोषी पाए गए हैं। अदालत की तरफ से फैसला सुनाए जाने के तुरंत बाद चाविन की जमानत निरस्त हो गई। इसके बाद उन्हें हथकड़ियों में ले जाया गया। खास बात यह है कि जब तक जूरी में शामिल जज अपने नामों के खुलासे पर फैसला नहीं कर लेते तब तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए जाएंगे। ये खबरें आप न्यूज 18 हिंदी के पॉडकास्ट में सुन रहे थे। इन्हें विस्तार से पढ़ने के लिए hindi.news18.com पर जाएं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। नई खबरों और नए अपडेट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अनुराग अन्वेषी को दें विदा। नमस्कार दोस्तों।